अरुणिमा घर वापस आ रही थी। बृजेश जी और आशा जी भी उसके साथ थे। अरुणिमा आशा जी के साथ पीछे बैठी हुई थी, जबकि बृजेश जी आगे ड्राइवर के साथ थे। अरुणिमा का चेहरा पूरी तरह से खिड़की के बाहर था और उसका रंग रूप उदासी से भरा हुआ था। जब से वो आरुषि से मिलकर आ रही थी, वो पूरी तरह उदास हो गई थी और आरुषि की बीमारी का सुनकर उनका दिल बेहद दुखी था। अब जब आरुषि खुद ही इलाज नहीं कराना चाहती थी, तो ये सुनकर उन्हें और भी बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि आरुषि ने गलत किया है और उसे सजा मिलनी जरूरी भी है। कानून सबके लिए बराबर है। जिसने जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। अगर आरुषि ने खुद ही सरेंडर कर दिया है और खुद को कानून के हवाले कर दिया है, तो कानून उसे सजा दे रहा है। लेकिन आरुषि खुद को सजा क्यों दे रही है, जबकि अरुणिमा ने तो ये भी कहा है कि वो आरुषि को उसके पिछले किए की सजा देना चाहती, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन फिर भी अरुणिमा आरुषि को माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि सूर्य ने जो एक्सीडेंट करवाया था उसमें अरुणिमा ने अपने बच्चों को खो दिया था, और कहीं ना कहीं ये आरुषि से भी जुड़ा हुआ था। सूर्य ने उसी को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया था, ताकि वो आरुषि को खुश कर सके। इसीलिए उसने बिना आरुषि से पूछे अरुणिमा का एक्सीडेंट करवा दिया था। अरुणिमा का मन अपनी बहन के लिए भारी हो रहा था। वो बस उसके ठीक होने की कामना कर सकती थी। आखिरकार वो लोग घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही बृजेश जी और आशा जी के साथ घर के अंदर कदम रखते हैं, सामने आस्तिक सोफे पर बैठा हुआ था और उसके साथ एक और शख्स था। आस्तिक अरुणिमा को देखकर मुस्कुरा उठता है। वो जल्दी से अरुणिमा के पास आता है और उसे अपने साथ अंदर लेकर आता है। वो सोफे पर अरुणिमा को बिठाते हुए उसे उस शख्स से मिलवाता है और कहता है, आनंद, इनसे मिलो, ये अरुणिमा है। आनंद अरुणिमा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो मैम, कंग्रेचुलेशंस। अरुणिमा ने अपना पेट हाथ पर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, अरुणिमा, वो तुम्हें बच्चे के लिए नहीं बल्कि शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। आनंद एक वेडिंग प्लानर है और मैंने उसे बुलाया है ताकि हमारी शादी की तैयारी शुरू हो सके। अरुणिमा की आंखें अचानक बड़ी हो जाती हैं और वो आस्तिक को देखने लगती है। बृजेश जी और आशा जी के चेहरे पर हैरानी थी, पर फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। आस्तिक ने सबको देखकर कहा, आप लोग ऐसे क्यों मुझे घूर रहे हैं? मैं और अरुणिमा साथ रहते हैं। अरुणिमा मेरी बच्चे की माँ बनने वाली है। हम लोग एक साथ एक फैमिली शुरू कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब मुझे अरुणिमा से शादी कर लेनी चाहिए? वैसे भी उसकी प्रेगनेंसी का काफ़ी समय हो गया है और अभी तक मैंने उससे शादी नहीं की है। अरुणिमा हैरान हो जाती है और जल्दी से कहती है, आस्तिक, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें लगता है कि इस कंडीशन में मैं शादी कर पाऊंगी? मतलब, आस्तिक ने कहा। तो अरुणिमा अपना सिर पकड़ते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरा पेट नहीं देख रहे हो? मैं मोटी लग रही हूँ। आस्तिक तुरंत बोला, तुम मोटी नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंसी में इतना वजन होना नॉर्मल है। अरुणिमा लगभग उसे डांटते हुए बोली, वही तो मैं कह रही हूँ कि प्रेग्नेंसी में इतना भारी शरीर होना नॉर्मल है, पर वो सिर्फ दूसरी प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, एक ब्राइड के लिए नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं इतना हैवी शरीर लेकर शादी का लहंगा पहनकर मंडप में आऊंगी? चलती फिरती बूंदी का लड्डू लग जाऊंगी। आस्तिक, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें डिलीवरी तक वेट करना पड़ेगा ताकि मेरा फिगर थोड़ा मेंटेन हो सके। अरे, मैं भी अपनी शादी वाले दिन अच्छी दिखना चाहती हूँ। बृजेश जी ने आनंद की तरफ देखकर कहा, आनंद जी, इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया है, ये जल्दी खत्म नहीं होगा। आप हमारे साथ गार्डन में आइए, हम शादी की बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आनंद मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप उठाता है और बृजेश जी और आशा जी के साथ गार्डन एरिया में चला जाता है। सोफे पर एक बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले माँ बाप खुद इस समय बच्चों की तरह लड़ रहे थे। आस्तिक आंखें दिखाते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो, मुझे तुम ऐसी ही पसंद हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिलीवरी के बाद भी तुम्हारा यही फिगर मेंटेन रहे, कम से कम खाते पीते घर की लगोगी। कभी देखा है तुमने खुद? एकदम सूखी लकड़ी की तरह लगती हो, लोग क्या कहेंगे? मैं तुम्हें खाना नहीं देता हूँ और शादी तो तुम्हारी ऐसी ही होगी, क्योंकि मुझे तुम ऐसी ही हैवी बॉडी के साथ पसंद हूँ। अरे, कल को जब हमारा बच्चा हमारी वेडिंग फोटो देखेगा तो कितना खुश होगा कि उसकी मम्मी शादी में चलती फिरती टेडी बेयर लग रही थी। लेकिन अरुणिमा गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी हैवी बॉडी के साथ शादी नहीं करूंगी। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें तब शादी करनी चाहिए थी जब मेरा पेट नहीं निकला था। आस्तिक एकदम से अरुणिमा के चेहरे को पकड़ लेता है। उसके होंठ मछली के आकार में खुल जाते हैं और वो अचानक अरुणिमा के होंठों पर चूम लेता है। अरुणिमा की आंखें भड़भड़ाती हैं और उसके होंठ आस्तिक के होंठों में कैद हो जाते हैं। किसके बाद आस्तिक धीरे से अलग होता है और अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ते हुए कहता है, मेरी प्यारी सी अरुणिमा, तुम चाहे जिस बॉडी शेप की हो, मुझे तुम हमेशा खूबसूरत ही लगोगी। और इस वक्त शादी का डिसीजन मैंने इसी ले लिया क्योंकि कुछ ही समय में तुम्हारी डिलीवरी की डेट नज़दीक आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बिना शादी के इस दुनिया में आए। अरुणिमा उसे खुशी भरी आंखों से देखती है और मुस्कुरा देती है। फिर वो नखरे दिखाते हुए कहती है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं ऐसे ही शादी करूंगी, पर एक शर्त है,
शादी के मंडप से तुम मुझे गोद में उठाकर लाओगी, फिर देखती हूँ तुम्हारी ये जिम वाली बॉडी कैसे काम करती है। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के माथे से अपना माथा टकराते हुए कहता है, तुम्हें तो सारी जिंदगी अपनी गोद में उठाए रखने को मैं तैयार हूँ। अरुणिमा मुस्कुरा उठती है और आस्तिक को देखती है। उन दोनों की खुशियों का एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। 10 दिन बाद लगभग सारे मेहमान आ चुके थे और अरुणिमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आस्तिक गलत नहीं कह रहा था, इस बॉडी शेप में भी अरुणिमा दुल्हन की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हैवी वर्क एम्ब्रॉयडरी साड़ी पहन रखी थी और मेकअप आर्टिस्ट ने उसे इतना प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया था कि साड़ी इतनी खूबसूरती से सजी हुई थी कि प्रेग्नेंट बॉडी भी बहुत आकर्षक लग रही थी। सीधे पल्ले की साड़ी के साथ अरुणिमा का पेट भी नजर नहीं आ रहा था और उसके बढ़े हुए वजन के बावजूद दुल्हन के जोड़े में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और मीरा हाथों में गजरा लेकर अंदर आती है। मीरा ने पेस्टल ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, उसके हाथों में गजरा था जो वो जल्दी से अरुणिमा के बालों में लगाती हुई कहती है, तुम भी ना आरू, तुम्हारी शादी है और तुम बच्चों को खेलने के लिए गजरा कैसे दे सकती हो? पता है शौर्य में ये गजरा ले जाकर किचन में छिपा दिया था और मेरी अरुणिमा पूरे घर में जासूस बनाकर इसे ढूंढ रही है। आशा जी सोफे पर बैठी थी और दिव्यांश उनके गोद में था जिसे वो खिला रही थी। अरुणिमा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तो क्या हुआ, बच्चे शादी में आए हैं तो मस्ती तो करेंगे ही। मीरा जल्दी से उसके बालों में गजरा सेट करती है और दुपट्टा उसके सिर के ऊपर ठीक कर देती है। उसके बाद आशा जी ने अरुणिमा के कानों के पीछे काजल का टीका लगाया ताकि उसे किसी की नजर न लगे। वहीं बाहर आस्तिक अपने इम्पोर्टेंट गेस्ट और बिजनेस पार्टनर के साथ मिल रहा था और उनसे बात कर रहा था। तभी एक सर्वेंट उसके पास आता है और कहता है, सर आपके लिए फोन है। आस्तिक ने फोन लिया और सीधे कान पर लगाते हुए कहा, हेलो कौन बोल रहा है? फोन पर नेहा जी की आवाज आती है, आस्तिक तुम शादी कर रहे हो और ये बात हमें मीडिया से पता चल रही है, क्या तुम्हें नहीं लगता था कि इस बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए?
अपनी माँ की आवाज सुनकर आस्तिक का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फोन लेकर एक कोने में चला जाता है और दांत पीसते हुए कहता है, आपको मेरी खुशियों की परवाह कब से होने लगी है? इतने सालों तक आप लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है और अब जब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा हूँ तो मुझे अपने और पराया के बीच का फर्क समझ आ रहा है, तो आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो यही चाहती थी ना कि मैं अपने फैसले खुद लूं और किसी को भी अपनी खुशियों के बीच ना होने दूं, तो मैं वही कर रहा हूं। आप मेरी जिंदगी में इतने सालों तक दखल देकर मुझे केवल एक जीत की सीढ़ी बना दिया। नेहा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, आस्तिक मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे हक है अपने बेटे की खुशियों में शामिल होने का। आस्तिक बोला, माँ होने का हक तो आपने सालों पहले अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया था, जब आपने एक 5 साल के बच्चे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू किया था। इतने सालों तक आपने मेरा माइंड वॉश किया और मुझे सिर्फ एक जीत की सीढ़ी बनाकर रखा, पर अब नहीं, अब मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। अब मेरी अपनी एक अलग दुनिया है जहाँ मैं हूँ, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरी अरुणिमा है। और आस्तिक रुक जाता है, एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, और मेरी इस दुनिया में मैं किसी ऐसे इंसान का साया बर्दाश्त नहीं करूँगा जो मेरी खुशियाँ ना चाहे। आप भूल गईं कि आपने मेरे घर आकर अरुणिमा के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, फिर भी आप उम्मीद करती हैं कि आप मेरी शादी में आएंगी? आज का दिन मेरे और अरुणिमा के लिए बहुत खास है और आज के दिन हम किसी के लिए भी अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देंगे। आस्तिक गुस्से में फोन काट देता है। इतने में उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है और सामने देव खड़ा होता है। आस्तिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देव ने आंखें तीखी करते हुए कहा, तुम्हें इन्वाइट किया था? आस्तिक बोला, अरे मैं वो नहीं कह रहा, मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे हो? देव ने हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ आस्तिक को देखा और कहा, नहीं मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी हूँ, बल्कि मैं यहाँ अपनी बात बताने आया था। मिस्टर आस्तिक रायचंद, तुम बहुत गलत काम कर चुके हो, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे देता हूँ, अगर तुमने अरुणिमा को कभी भी दुख पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहकर देव वहाँ से जाने ही वाला था कि आस्तिक ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, तुम आज भी अरुणिमा से प्यार करते हो?